सत्संग जी, प्रेम से कहना, आज यहाँ जहांगीरपुरी में आने का जो अवसर प्राप्त हुआ, तो दास को लग रहा है शायद दास पहली बार ही यहाँ सत्संग करने का ये अवसर दास को मिला, और बहुत ही हृदय प्रसन्न केस रूप में आप सभी को, जिस तरह से जिक्र भी किया गया कि ऐसे एक परिवार के रूप में आके जो ये समा सदगुरु ने बख्शा आप सबके बीच आने का, तो हम सब ने जहाँ महापुरुषों के वचन सुने, जहाँ निरंतर परमात्मा का यशोगान, सदगुरु की महिमा, मानव को ये संदेश के एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहा जाए, प्रेम के साथ रहा जाए, दीवारें नफ़रत इन सब की कोई गुंजाइश नहीं, कि एक ऐसा प्रेम से महकता हुआ संसार बसाया जाए, कि छोड़ें ये नफ़रत, छोड़ें ये मैं मेरी की बातें, क्या वो मिलजुल कर रहें। तो हो सकता है जो पहली बार कोई इस संदेश को सुन रहा हो तो उसे लगे कि ये तो बड़ी आम सी बात है, ये तो हर शिक्षक यही बात कहता है, किसी को टीवी पे भी सुनते हैं वो भी यही बात कहता है कि मिलजुल के रहा जाए, ये तो इंसानियत की बात, इंसानियत का पाठ तो बहुत लोग पढ़ा के गए, पढ़ाते हैं, तो फिर इसमें अध्यात्म की या सद्गुरु की क्या विशेषता है, ऐसी क्या अलग बात है। कितनी बार हमने ये नारे सुने के हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सब आपस में भाई भाई, हमने ये नारे कितनी बार बचपन से, चाहे वो कभी किसी परेड के दौरान, कभी कहीं, तो फिर यहाँ जब वो इस मंच से संदेश दिया जाता है या अन्य किसी मंच से संदेश दिया जाता है, तो दोनों में अंतर क्या है, क्या बात सेम ही बात कही जा रही है, एक ही बात कही जा रही है, कि हाँ बेशक मैं हिंदू, सामने वाला मुसलमान या कोई सिख या कोई ईसाई, हमें प्यार से साथ रहना है, या बस इतना ही कहा जा रहा है कि हाँ मैं इस जात का, वो उस जात का, पर हमें आपस में साथ साथ रहना है। साथ साथ रहना सिर्फ एक परिणाम है, प्रेम जिसकी बात की जा रही है वो एक परिणाम है, कॉन्सिक्वेंस है। सदगुरु के संदेश में और आम दुनिया के संदेश में जो फ़र्क है वो है रूहानियत का, वो है सच का, वो है इस परमात्मा की बोध का, वो है अपनी इस पहचान का कि मैं क्या हूँ। और जब ये बोध मेरे जीवन में आ जाता है तो फिर मुझे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दिखने बंद हो जाते हैं, मुझे ये जाति पाति दिखनी बंद हो जाती है। फिर ये अध्यात्म के रास्ते पर जब मैं चलता हूँ, इस सच को जब मैं पा लेता हूँ, तो फिर मेरे एकत्व के संदेश में या मेरे एकत्व वाले जीवन में ये भाव नहीं होता कि वैसे तो मैं हिंदू हूँ पर देखो मैं मुसलमान भाइयों के साथ भी प्यार से रह लेता हूँ, वैसे तो मैं फलानी जात का हूँ पर देखो मैं उस जात वाले के साथ भी रह लेता हूँ, मुझे ये सिखाया जा रहा है। अगर मेरा नज़रिया अभी भी यही है कि क्योंकि हमें प्यार से रहना है, वैसे बेशक हम अलग हैं, तो कहीं इस बोध में मेरे कमी रह गई है। ब्रह्म ज्ञान जब जीवन में सदगुरु बख्शते हैं तो वो सारे फ़र्क जो हमने माने होते हैं, जिनको मानकर हम जी रहे होते हैं, जो अपनी पहचानें हमने बनाई होती हैं जिनको मानकर हम जी रहे होते हैं, वो ढेर हो जाती हैं, वो गिर जाती हैं, वो समझ आता है कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं, ये सब मेरा बनाया हुआ। तो जब सदगुरु जब इस धरा पर आकर ये संदेश देते हैं तो वो नज़रिया बदलते हैं, वो ऐसा नज़रिया बख्श देते हैं जिस नज़र को ये फ़र्क दिखने बंद हो जाते हैं। अभी आखिरी गीत में भी हम ये सुन रहे थे कि यहाँ प्यार की बातें होती हैं, नफ़रत को मिटाया जाता है, तो वो बातें सिर्फ बातों की तरह नहीं की जाती, वो बातें जीवन जीकर। नफरत का कोई कारण ही नहीं रह जाता जब सतगुरु की शरण में आके सतगुरु के ब्रह्म ज्ञान को हम प्राप्त कर लेते हैं। अगर ये रमस समझ आ गई, ये इनका नुक्ता समझ आ गया, तो कोई कारण लाख गिनवा दे तो सारे कारण बचकाने लगेंगे किसी से नफरत करने के। और प्रेम के लिए कोई कारण ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम खुद ही इतना आनंद लेने लगते हैं जब हमारे अंदर से ये प्रेम बहता है, जब कहीं मुस्कुराहट का कारण, कोई कारण ढूंढना ही नहीं पड़ता, हर पल में हर क्षण में परमात्मा के दर्शन, हर पल में हर क्षण में सद्गुरु की कृपा का एहसास, हर पल में हर क्षण में संतों का संग। तो जो प्रेम है उसको फिर किसी कारण की ज़रूरत नहीं रह जाती, मेरा जीवन ही प्रेम बनने लगता है। तो इसलिए बार बार हम समागम में भी हमने सुना कि रूहानियत और इंसानियत संग संग। अगर सिर्फ साथ रहने की और भाईचारे की बात तक रहते तो इंसानियत से भी काम चल जाता। अक्सर जब कहीं जाने को मिलता है देश के अन्य स्थानों पर, तो जब समाज सेवक या कोई जो समाज में अन्य तरह से अपनी रोल्स या सेवाएं निभा रहे हैं, तो वो अक्सर एक बात कहते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत एक प्यार है, यहाँ सारी अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग इकट्ठे रह लेते हैं, यहाँ सारे धर्म के लोग इकट्ठे रहते हैं, हमारे यहाँ मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, मस्जिद भी है, बहुत प्रेम है। देखो सब अलग अलग हैं बेशक, पर फिर भी साथ रह लेते हैं। तो वहीं भाव आया कि ये बहुत मुबारक है ऐसा साथ रहना, पर वो नज़ारा कितना खूबसूरत होगा जब साथ तो ऐसे ही रह रहे हैं लेकिन ये फ़र्क मिट गए, ये फ़र्क दिखने बंद हो गए कि यूं तो हम अलग हैं पर हम साथ साथ रह लेते हैं। वो नज़ारा कितना खूबसूरत होगा जब मेरा जीवन जीने का अंदाज़, मेरे जीवन जीने का एक एक क्षण इस प्रकार हो जाएगा कि अलग तो कुछ है ही नहीं, अलग हो कैसे सकता है। तो जब तक मैं खुद को एक अलग अस्तित्व, एक अलग एंटिटी मानकर अपना जीवन जी रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है ये जो दुख आएंगे, जो सुख आएंगे, इन सब के साथ मैं डोलूँगा। मेरे जीवन की गति अगर बहुत ही जो मेरे अनुसार सुख की चीज़ें हैं मुझे मिलने लगेंगी, तो मैं ज़रूर बहुत ही खुश, ज़रूर मैं परमात्मा का यशोगान ज़्यादा करूँगा। और जहाँ एक या दो बारी भी ऐसा हुआ कि मेरे अनुसार कुछ नहीं हुआ, तो मैं इस परमात्मा के होने पर भी शक शुभा करने लगता हूँ। उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कितने साल हो गए इस भक्ति की राह पर। अगर मेरी बुनियाद या मेरा रिश्ता परमात्मा के साथ या सद्गुरु के साथ सिर्फ इस बात पे टिका है कि मैं मांगता जाऊँ और आप देते जाओ, या जो जो मैं कहता जाऊँ वो होता जाए, तो वो ज़्यादा देर तक चलने वाली बात नहीं है। अभी भी महात्मा कह रहे थे कि किसी कारणवश अगर कोई नहीं आया तो जब पता करते हैं तो यही बात कि कोई बात शायद उस रूप में पूरी नहीं की परमात्मा ने। तो परमात्मा ने तो अपने होने का प्रूफ किसी को किसी की बात पूरी करके देना, परमात्मा की तो वो ड्यूटी है ही नहीं। परमात्मा तो इस बात का मोहताज है ही नहीं कि कितने लोग ये कह रहे हैं कि मैं हूँ, ना सतगुरु इस बात का मोहताज है। तो फिर अगर मेरा जीवन या मेरी भक्ति या मेरा विश्वास अगर इस बात का मोहताज है कि हाँ, तब तक तो मैं परमात्मा का नाम ले रहा हूँ जब तक जो मैं कहता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो जाता है, तो कहीं मेरी भक्ति, मेरी परमात्मा को लेकर जो सोच है वो कहीं बचकानी है, वो अभी वैसी नहीं हो पाई, मेरा रिश्ता मेरा नाता इस परमात्मा के साथ वैसा नहीं हो पाया जैसा हो सकता था, जैसा सद्गुरु मेरे जीवन में आ गए जो वो मुझे देना चाह रहे थे। जैसे कोई बाप अपने बच्चे को एक गाड़ी देना चाहे कि बड़ी गाड़ी चलाए, और वो खिलौने वाली गाड़ी ही चला कर खुश है, कि नहीं यही ठीक है, ये मेरे रिमोट से चलती है, जहाँ मैं ले जाना चाहता हूँ जाती है, घर में ही घुमा लेता हूँ इस गाड़ी को। तो अगर बच्चे का ध्यान या बच्चे का आनंद उस रिमोट वाली गाड़ी में ही ज़्यादा है, तो वो फिर असली गाड़ी की जब तक चाह नहीं आती तब तक वो उसको चलाएगा भी नहीं। तो कहीं ऐसा ही हमारा जीवन, कहीं ये खिलौनों में, ये जिसको कहा जाता है कि कंकड़ पत्थर में ही ना व्यतीत हो जाए, ये जो हीरा जन्म जिसको बार बार कहा गया है, वाकई हम इसका मोल डाल पाए, वाकई जीवन इस तरह से महके कि इस जीवन में सत्य है। ये भी जिक्र हुआ कि ये एक जिम्मेवारी भी है कि हमें ये रोशनी मिली है, ये सच मिला है, तो हमें सच को पहुंचा सकें अधिकतर मानवता तक। तो अगर दिया रोशन है तो दिया अपनी जिम्मेवारी अगर रोशनी फैलाने की पूरी करना चाहता है, निभाना चाहता है, तो उसको सिर्फ एक ही कर्म करना है, उसको सिर्फ रोशन रहना है। और वो रोशन है तो उसकी रोशनी अपने आप ही अंधेरों को मिटाती चली जाती है। कहीं किसी अंधेरे के अंदर इतनी ज़रूरत नहीं है कि रोशन दिए के सामने वो खड़ा हो सके। तो मेरा प्रयास सिर्फ इतना रहे कि मैं जिस रोशनी से मुझे सदगुरु ने नवाज दिया है, इसकी मैं संभाल कर सकूं। और इसकी संभाल सिर्फ और सिर्फ इनके वचनों पर चलकर समर्पण के साथ हो सकती है। अपनी बुनियाद, ये अक्सर होता है जब संसार में हम जी रहे हैं, अभी परमात्मा से या भक्ति से नाता नहीं जुड़ा, तो अक्सर कोई ना कोई ऐसी घटना संसारिक, या कोई ना कोई ऐसा जिसको हम जीवन में चमत्कार भी कहते हैं, कोई ना कोई ऐसी एक घटना शायद जो हमें परमात्मा की तरफ हमारा ध्यान ले जाती है, भक्ति की तरफ हमारा ध्यान ले जाती है। ऐसा अनेकों महापुरुषों से जब बात होती है तो देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो कारण बन जाता है। वो बेशक शुरुआत के लिए मेरे जीवन में अगर कोई कारण बना, तो उस घटना का, उस करामात का बहुत शुक्राना कि उसने मुझे सदगुरु के चरणों तक पहुंचा दिया या इस परमात्मा तक पहुंचा दिया। पर अब जो सदगुरु मुझे देना चाहते हैं, मैं उसको प्राप्त कर पाऊँ, जो ये ब्रह्म ज्ञान जिसकी इतनी महिमा, ये मेरे जीवन में वाकई उतर पाए। और जब ऐसी अवस्था किसी की प्राप्त होती है तो उसको लगता है कि ये मैं सब तक पहुँचाऊँ, सब तक पहुँचे ये बात। और फिर जब कोई शब्दों का सहारा लिया जाता है तो शब्द बोलते ही ऐसा लगता है कि कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता था पर शायद ये शब्द पूरी तरह से वो बात कह नहीं पाए। बताना तो मैं इतना कुछ चाहता था कि कितना आनंद है जीवन में, कितना परिवर्तन है जीवन में। अक्सर वो गूंगे के गुड़ की बात की जाती है, ये बिल्कुल वैसी ही अवस्था, जैसे कबीरदास जी ने भी कहा है कि पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, कहिए कोई शोभा नहीं देखे ही प्रमाण। कि ये तेज का अनुमान कैसा लगाया जाए, कहता हूँ तो इसकी शोभा घट जाती है, इस परमात्मा का कितनी महिमा गाऊँ, क्या क्या इसके बारे में मैं बताऊँ, कहूँगा तो ऐसे लगता है कि कहीं मैं इसका निरादर ही तो नहीं कर देता, इतने छोटे मेरे शब्द, खाक जैसे शब्द मेरे, पर कहे बिना रुका भी नहीं जाता, क्योंकि यही एक ज़रिया लगता है कि मेरी आवाज़ शायद कहीं तक पहुँचे, शायद किसी के जीवन में उससे परिवर्तन आए। जो मुझे गुड़ मिला है ये मीठा, शायद मैं किसी और को भी कह सकूं कि इसको प्राप्त कर लो। तो अरदास यही कि मेरा जीवन इस रोशनी से रोशनाया रहे, ये सच की महक इस जीवन में इस प्रकार बस जाए कि कोई साथ से गुजरेगा तो महक तो इस तक पहुंचनी है। दास ने हाल ही में कैथल भी जाने का मौका मिला तो यही एक भाव आया कि किसी बगीचे में अगर बहुत सारे फूल खिले हों और कोई वहाँ से गुजर जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह उन फूलों को ना देखे, उनकी खुशबू उस तक ना पहुँचे। तो फूल अपना काम करते हैं जिस प्रकार महक कर, हम सब भी अपने जीवन में ये सच को पाकर, ये सच्चाई वाला जीवन, कि हर एक पल में इस सच के साथ, इस सच के एहसास में, ये जो सिमरन का भी जिक्र होता है, तो ये सिर्फ शब्द नहीं, ये उस एहसास का जिक्र है कि क्या वाकई मैं अपने को इस परमात्मा की शरण में महसूस कर रहा हूँ, क्या वाकई जब मैं कह रहा हूँ तू ही निरंकार, तो इस निरंकार के दर्शन हो रहे हैं, क्या वाकई मैं तेरी शरण हाँ, कि मैंने अपनी मैं को वाकई इतना ख़त्म कर लिया है कि बस अब इसकी शरण में ही हूँ मैं। तो साथ संगत, ये जो एहसास सद्गुरु माता जी ने अक्सर, कितनी बार ये बात कि शब्द मात्र को सिमरन नहीं कहा जाता, तो इसी प्रकार से ये जो सत्संग कार्यक्रम में भी हमने अनेकों महापुरुषों को हम सुनते हैं, सुबह सत्संग की बात होती है कि डेली सत्संग जा रहे हैं, तो वो इसीलिए ही है कि ये मेरी लिव जो है इस परमात्मा से जुड़ जाए। ये जो संदेश हम दे रहे हैं कि भाईचारे से जीवन जिया जाए, प्यार फैले संसार में, तो पहले मेरे अपने जीवन में वो प्रेम आ जाए। मेरे अपने जीवन में वो प्रेम आ जाएगा तो मेरे रिश्तों में भी वो प्रेम, मेरे घर में भी वो प्रेम, मेरे पड़ोस में भी फिर वो प्रेम आने लगेगा। सिर्फ अपनी अपनी जिम्मेवारी हम लेनी शुरू करें कि कहीं, अक्सर घर से ही हम बात करते हैं कि बात आती है कि घर वालों को हम सब टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि घर पे तो चलो रिएक्शन दे दिया, रिएक्शन हो गया, पर मेरा जीवन इस प्रकार बनता चले जाए कि जो मैं समाज में जिस तरह से खुद को प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, घर पर भी मैं जब वैसा होने लगूँगा, तो इस बात का मतलब यही हो गया कि वो जो एक फेस या वो जो एक डुअलिटी, वो मेरे जीवन से फिर ख़त्म होने लगती है। अगर प्रेम की बात मैं बाहर कर रहा हूँ, अगर बाहर मैं समाज में टॉलरेंस की बात कर रहा हूँ, तो घर के अंदर भी वही प्रेम, वही टॉलरेंस के भाव मेरे जीवन में, वो मेरे रिश्तों में भी वो प्रमाण बने, चाहे बड़े छोटों के साथ या छोटे बड़ों के साथ, एक दूसरे की ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करते हुए कि हाँ, किसी और का सोचने का तरीका मुझसे अलग हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे क्रोध करने का अधिकार आ गया या मुझे किसी को नीचा कहने का अधिकार मिल गया। क्योंकि अगर क्रोध कर रहा हूँ तो भी अपना नुकसान कर रहा हूँ, किसी को नीचा कह रहा हूँ तब भी अहंकार से भरा जा रहा हूँ, हर एक अवस्था में अपना नाता इस परमात्मा से कमज़ोर ही कर बैठता हूँ। फिर दोबारा जीवन में वैसा फील होने लगता है कि अब आनंद नहीं आ रहा, संगत में जाते तो हैं पर आनंद नहीं आ रहा। आनंद कैसे आएगा जब जीवन में बार बार वही जलता हुआ कोयला मैं पकड़ लूँ, फिर फेंकूँ, और फिर दुनिया को तो कहूँ कि कोयला पकड़ोगे किसी पे फेंकने के लिए तो हाथ अपना पहले जलेगा, और फिर अपना हाथ दोबारा जलाते चला जाऊँ, कब तक ऐसे करेंगे। एक एग्जांपल हम सुनते हैं कि मछली जब कांटे में फंस जाती है तो वो कांटे को पकड़ने के लिए नहीं जाती, वो उस पे लटके हुए मांस की तरफ या जो खाना मछुआरे ने लगाया होता है उसको पकड़ने जाती है, पर अब वो वहाँ तक रुक नहीं पाती, उसको लगता है और भी आगे स्वाद मिलेगा, तो उस कांटे में फंस जाती है। अब दास को ऐसा लगता है अगर मछली ज़िंदा बच जाए तो अगली बार शायद ऐसे मांस के टुकड़े को ना पकड़े, शायद चेतन हो जाए, पर हम इंसान, हम बार बार उसी कोले को पकड़ते हैं, उसी को फेंकते हैं, उसी को पकड़ते हैं, उसी को फेंकते हैं, और वहीं हम ये भी कहते हैं कि हम सबसे सर्वश्रेष्ठ क्यों नहीं हैं। उस बेचारी मछली को तो दोबारा मौका नहीं मिलता क्योंकि जीवन यात्रा उसकी समाप्त हो जाती है। हम इस चेतनता को अपने जीवन में लाएं कि जब कुछ करके ऐसा एहसास कर लिया कि इससे पाया क्या, क्रोध किया, अपना भी दिल जलाया, सामने वाले का भी, और सामने वाला तो शायद मेरे क्रोध को इतनी अहमियत देता है कि नहीं, इस बात का तो मुझे अंदाज़ा नहीं। हमें तो ज़रूर लगेगा कि क्रोध किया है, शायद सोच रहा होगा दो दिन कि डांट पिटी है, कुछ तो गलत किया होगा। हो सकता है उसको बिल्कुल फ़र्क भी ना पड़े, शायद वो यही कहता हो इनकी तो रोज़ की आदत है। परेशान मैं क्रोध करते वक्त भी होता हूँ, उसके बाद भी होता हूँ। तो हाथ बार बार जला रहे हैं, फिर वही बात। तो एक बारी अगर हाथ जलाना ही है तो चेतनता के साथ हाथ जलाया जाए, ताकि एहसास हो कि इसमें नुकसान तो अपना ही है। जैसे गर्म पतीले पे भी हाथ लग जाता है तो हाथ अपने आप वहाँ से हटता है, बार बार हम हाथ नहीं लगाते। हम शरीर को लेके भी इतने चेतन हैं कि अगर गर्म किसी पतीले पे हाथ एक बारी लगा लिया तो अगली बार हम बड़ा ध्यान रखते हैं। ऐसे ही जीवन में जब लगे कि ये मैं हावी हो रही है मुझ पर, इस परमात्मा से कहीं मुझे दूर लेके जा रही है, मेरे आनंद में बाधा बन रही है, तो वहाँ अपनी इस चेतनता को, अपने विवेक का, ये जो संतों महापुरुषों का संग सद्गुरु ने हमें बख्शा है, ये इसलिए ही बख्शा है कि ये जीवन यात्रा में कई बार ऐसे पड़ाव आ जाते हैं, कई बार हम ऐसे मोड़ पर खड़े हो जाते हैं कि लगता है कि जीवन से शायद आनंद चला गया है, परमात्मा से मेरा रिश्ता कमज़ोर हो गया है। वहाँ फिर महापुरुषों के वचन, वहाँ ये महापुरुषों का संग, वहाँ ये सत्संग की अहमियत। इसलिए बार बार के जितना सत्संग मिल जाए, ताकि छोटी सी भी मिट्टी की परत अगर चढ़नी शुरू हुई है तो वो उसी वक्त साफ़ हो जाए। घर की सफाई भी हम रोज़ इसलिए ही करते हैं कि इकट्ठी करनी पड़ेगी तो कितना टाइम लगेगा। तो दास अंत में यही भाव कि इस प्रकार से कल भी गोविंदपुरी में भी दास ने यही बात कही कि ये जो दिल्ली में इतने दिन रहने का मौका मिला तो भाव मन में यही आया कि आप सब तक कोशिश की जाए कि ब्रांच लेवल या सेक्टर लेवल पे कुछ इस तरह से कार्यक्रम हो, ताकि ये नज़दीकत के साथ एक परिवार की तरह, जिस तरह इतना सुंदर परिवार हमें मिला है, ये तो ये वाकई एक इस प्रकार से सत्संग करने का अवसर मिले कि जहाँ लगे कि घर में बैठकर आपस में परिवार में बात की जा रही है। तो सबके लिए दास यही अरदास परमात्मा से करता है, दातार से करता है कि ऐसा विवेक, ऐसी चेतनता जो सतगुरु ने जीवन में प्रदान करी है, ये इस विवेक पर कभी कोई धूल ना जमे, कोई ऐसी धुंध ना जीवन में आ जाए कि मैं अपनी चेतनता से, अपने विवेक से दूर हो जाऊं। सद्गुरु निरंतर विवेक का, चेतनता का जो जिक्र करते हैं, वो जिक्र सिर्फ मेरे कान रस तक का कान रस ना बन के रह जाए, मैं वाकई इस चेतनता को अपने जीवन में ला पाऊं। और ये सिर्फ अगर मैं करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करूंगा, क्योंकि इससे किसी और को लाभ मेरे को करके नहीं दिखाना, या मुझे किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है देखो मैं कितना चेतन हूँ, या क्योंकि मुझे ये करके किसी को प्रूफ करना है कि मैं चेतन हूँ। अगर चेतनता ये वाली जीवन में आएगी, ये विवेक जीवन में आएगा, तो सिर्फ़ और सिर्फ इसका लाभ, या सिर्फ़ और सिर्फ जो जीवन में परिवर्तन आएगा वो मेरे ही आएगा। तो ये बिल्कुल ही एक निजी चुनाव है। धर्म की भी जब बात की जाती है तो ये कोई समाज को दिखाने के लिए नहीं, अपनी धार्मिकता हमें दिखानी है या धार्मिक बनना है। ये सत्य, ये ब्रह्म ज्ञान, ये जो सच्चा धर्म है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि इंसान मुकम्मल इंसान बन सके, वो जो बूंद है वो सागर बन सके। वो बूंद सागर बन के सागर बनती है तो उस बूंद का ही विस्तार हो रहा है, वो किसी और के लिए नहीं सागर बन रही। तो अगर हमें ये लगता है कि हम किसी और के लिए, कि हम किसी पे एहसान कर रहे हैं सेवा करके, सिमरन करके, सत्संग करके, वचनों को सत्वचन करके, गुरु के वचनों को मानकर, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल। क्योंकि अगर ये भाव मन में आ रहे हैं तो अभी तक हमें ये जो वरदान मिले हैं सेवा सिमरन सत्संग, इनकी कदर ही नहीं पता, इनका मूल ही नहीं पता। तो अगर गुरु के वचनों को मैं जीवन में ला रहा हूँ तो अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए, और इसलिए हम यहाँ हैं क्योंकि हम सबको अपने जीवन की हालत पता है क्या थी। तो सत्य को, भक्ति को, परमात्मा को बहुत ही निजी रूप से, किसी और की भक्ति पे टिप्पणी, किसी और की सेवा पे टिप्पणी, किसी और की जीवन के ऊपर नज़र गाड़ कर मैं कहीं ये ना सोचने लगूं कि मेरे नंबर कितनों से ज़्यादा हैं या कितनों से कम हैं, बाहर ना देखूं, सिर्फ़ और सिर्फ अंदर। और जितना ज़्यादा खुद का सुधार करता चला जाऊंगा उतना ज़्यादा इस बात का एहसास होगा कि अभी तो और सुधार की ज़रूरत है। जितनी सीढ़ियां मैं चढ़ जाऊंगा लगेगा अभी तो और सीढ़ियां चढ़नी हैं। भक्ति मार्ग ही ऐसा है, हर सीढ़ी के बाद एक और सीढ़ी। और इसलिए फिर ये सेवा सिमरन सत्संग और जो ये सद्गुरु जीवन में है तो ये सीढ़ियां चढ़ते हुए मेरे जीवन में आनंद बना रहे, ये जो जर्नी है ये इतनी खूबसूरत हो जाए कि ये एफर्टलेस, ऐसा फील ही ना हो कि इतनी सीढ़ियां, बिल्कुल जिस तरह पानी बहता है वैसे भक्त ये सारी सीढ़ियां चढ़ जाता है। तो दास यही अरदास करेगा अंत में कि प्रेम सब आपस में बनाकर ये जो इतना सुंदर परिवार मिला है सब एक दूसरे को साथ लेकर चलें, प्रेम से साथ रहें और अपना जीवन ही इस प्रकार रोशन हो कि शब्दों की ज़रूरत इस सत्य के प्रचार के लिए हमें ना पड़े। ऐसा एक अनूठा प्रमाण बने, ऐसा अनूठा जीवन बने कि वाकई वो खुद ही प्रेरणा का सोर्स बने लोगों के लिए कि हाँ जीवन इस प्रकार भी जिए जा सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ दास इजाज़त लेगा, सात संग जी प्यार से कहना।